माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवार बल्लभ गिरिवार यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन रमण प्रिय बन मन तीरा बना यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बन यमुना तीरा बन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ज्ञान तिमिरा भाषा ज्ञान जन सला कया उनमिल तम जैन तस्मै श्री गुरवे नमः वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमला श्री गुरु वैष्णवा श्री रूपम साग्र जाता सहगण रघुनाथान्वितम तम सदेव साद्वैतम सावधूता परिजना सहिता श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा ਲਖਣ ਲਲਿਤਾ ਸ਼ਿਵ ਸਾਖਾਨ ਤਾਸਾ ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰੁਣਾ ਸਿੰਧ ਦੀਨ ਬੰਧ ਜਗਤਪਤੇ ਗੋਪੇਸ ਗੋਪਿਕਾ ਰਾਧਾ ਕਾਂਤ ਨਮੋਸਤੇ ਤਤ ਕਾਂਚਨ ਗੌਰਾਂਗੀ ਛੁਤੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਣਮਾਮੀ ਪੰਛਾ ਕਲਪ ਤਰੁਭਯਸ਼ਚ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧੁ ਭਯੇਵ ਚ ਪਤਿਤਾਨਾਂ ਪਾਵਨੇਭਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੈਤਨਯ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਦ੍ਵੈਤ ਗਦਾਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਸਾਦਿ ਗੌਰ ਭਕਤ ਵ੍ਰਿੰਦ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 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 ਹਰੇ 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 ਰਾਮ ਹਰੇ ਰਾਮ 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 ਹਰੇ ਹਰੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਮਸਕ੍ਰਿਤਿਆਨਰਮ ਚੈਵ ਨਰੋਤਮ ਦੇਵੀਂ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਆਸਮ ਤਤੋ ਜਯਮ ਗੇ ਜਯੇਤ ਨਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਯੇਸੁ ਅਭਦ੍ਰੇਸੁ ਨਿਤਯਮ ਭਾਗਵਤ ਸੇਵਯਾ ਭਗਵਤੀ ਉਤਮ ਸਲੋਕੇ ਭਕਤਿਰ ਭਵਤਿ ਨੈ ਨਮੋ ਵਿਸ਼ਵਪਾਦਾਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਾਯ ਭੂਤਲੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਭਕਤਿ ਵੇਦਾਂਤ ਸਵਾਮਿਨਿਤਿ ਨਾਮਿਨੇ ਨਮਸਤੇ ਸਾਰਸਵਤ ਦੇਵੇ ਗੌਰਵਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਣੇ ਨਿਰਵਿਸ਼ੇਸ ਸੁਨਵਾਦੇ ਪਸ਼ਚਾਤ ਦੇ ਸਤਾਨੇ ਲੀਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਪਾਦ ਬ੍ਰਹਮਾਂਸ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਜੀ ਕਾ ਸਰਸਵਤ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਅਭੈ ਸ਼ਰਨਾਰਵਿੰਦ ਭਕਤੀ ਵੇਦਾਂਤ ਸ਼ਮਸ਼ਿਲ ਪ੍ਰਭਾਦ ਕੀ ਅਨੰਤ ਕੋਟਿ ਵੈਸ਼ਨੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੀ ਨਵਾਚਾਰ ਸ਼੍ਰੀਦਾਸ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਨਿਤਾਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਨੰਦੇ ਓਂ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण ਸ੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਚਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤ ਆਦਿ ਲੀਲਾ ਅਧਿਆਇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਖਿਆ 63 ਹਰੇ ਉੱਪਰ ਆਈਏ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਪਰ ਆਈਏ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮ ਲੋਕ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਲੋਕ ਕੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀ ਹੈ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਜਦਪਿ ਇਹ ਕਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਾ ਦੀਏ ਆਈ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ ਇਤਨੇ ਆਪ ਵਰਿਸ਼ਠ ਹੈ ਯਹਾਂ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਹਮ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਮਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਏ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਔਰ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਾਧਾਏ ਥੀ तो इन्होंने उसको समाधान किए करते आज भी करते हैं
बहुत आभारी हूँ धर्मात्मक रूप से। माला डालिए, रोजू को एक माला डालिए, माला पहनाइए प्रभु को। तो चेतन चरितामृत आदि लीला अध्याय एक श्लोक संख्या 63 है। भवद्विधा भगवता तीर्थभूता स्वयं विभु तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। भवद्विधा भगवता तीर्थभूता स्वयं विभु तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। भवद्विधा भगवता तीर्थभूता स्वयं विभु तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। सब लोग एक साथ पढ़ लीजिए, मत आए, सब लोग एक साथ पढ़िए। सबका एक बार में हो गया, एक बार आप लोग भी सब लोग पढ़ लीजिए। कोई यह नहीं कहेगा कि हमको अवसर नहीं मिला, सबका हो गया है कि नहीं। इजी प्रोसेस है, सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। शब्दार्थ भवत आप विधा की भांति भागवता भक्तगण तीर्थ तीर्थस्थान भूता वर्तमान स्वयं स्वयं विभो हे सर्वशक्तिमान तीर्थ कुर्वन्ती तीर्थ स्थान बनाते हैं तीर्थानि तीर्थ स्थान को स्वंतस्थेन उनके हृदयों में रहकर गदाभृता भगवान के द्वारा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा
श्रील प्रभुपाद के आपके समान संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं। अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य संगी होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थानों को भी पावन बना सकते हैं। दोहराएंगे, आपके समान संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं, अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य संगी होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थानों को भी पावन बना सकते हैं। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवतम स्कंध 1:13-10 में महाराज युधिष्ठिर द्वारा विदुर से कहा गया है। महाराज युधिष्ठिर अपने संत स्वरूप चाचा का जो तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहे थे, इस तरह स्वागत करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि उन जैसे शुद्ध भक्त तो स्वयं मूर्तिमान तीर्थ स्थान हैं, क्योंकि उनके हृदयों में सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वास रहता है। उनकी संगति से पापी पुरुष अपने पाप फलों से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ शुद्ध भक्त जाते हैं वही तीर्थ स्थान बन जाते हैं। तीर्थ स्थानों का महत्व ऐसे शुद्ध भक्तों की उपस्थिति के कारण ही होता है। तो यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 1:13 क्रम 10 श्लोक संख्या में आता है। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में ही विदुर जी हस्तिनापुर का त्याग करके तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। जब भगवान हस्तिनापुर में संधि कराने के लिए आए थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण, मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ, मैं राज सुख के लिए प्रजा को युद्ध की ज्वालामुखी में नहीं डालना चाहता हूँ। युद्ध का परिणाम हमेशा भयानक होता है और युद्ध में अनेक निरीह बेचारे लोग मारे जाते हैं, असहाय लोग मारे जाते हैं, बदमाश चोर उचक्के तो भाग जाते हैं। जब भी युद्ध होता है, बमबारी होती है, तो जितने बदमाश हैं वो पहले ही अंडरग्राउंड हो जाते हैं और आम भोली जनता मारी जाती है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से कहा कि आप कैसे भी युद्ध को टालिए, युद्ध न हो इसके लिए कोई उपाय कीजिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि राज्य के लिए प्रजा को युद्ध में झोंक दूं, युद्ध के ज्वालामुखी में। युद्ध में लाखों करोड़ों नरसंहार होता है, मैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रजा को युद्ध में नहीं झोंकना चाहता हूँ। अब जाइए एक बार और प्रयास कीजिए जिससे युद्ध न हो। तो भगवान ने कहा कि क्या क्या करना है, कैसे युद्ध को स्थगित किया जाए। यद्यपि भगवान युद्ध चाहते थे, युधिष्ठिर महाराज युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान चाहते थे कि युद्ध हो, और जो भगवान चाहते वही होता है। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। प्रभुपाद दो ही भगवान कृष्ण दो ही उद्देश्य से आए थे, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो युद्ध नहीं होगा तो दुष्ट कैसे मारे जाएंगे, दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए भगवान आए थे, इसलिए भगवान चाहते थे कि युद्ध हो। विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहेंगे नहीं, मैं युद्ध नहीं चाहता हूं। अब जाइए कहिए कि धृतराष्ट्र से, दुर्योधन से कहिए कि अरे पांडवों का आधा राज्य दे दो, क्यों युद्ध के लिए व्यर्थ के प्रयास कर रहे हो। कहिए कि आधा उन लोगों का तो होता ही है ना, आधा राज्य दे दो।
दिनकर जी ने रश्मि रथी में लिखा है, बहुत सुंदर वर्णन किया है कि न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। विदेशी महाराज कहे कि कहिए कि अगर तुम्हारे पास न्याय है तो आधा पांडवों को दे दो, न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें परेशानी है तो 5 गांव दे दो सब, अगर वह नहीं मानेंगे तो 5 गांव पर भी हम सहमत हो जाएंगे, 5 गांव पर भी हम मान जाएंगे, युद्ध नहीं चाहिए। लेकिन भगवान गए, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए कि 5 गांव, आधा आधा तो बहुत दूर की बात, 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। दुर्योधन यह भी दे न सका और आशीष समाज के लिए न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था अनंत साधने चला। जो अनंत है भगवान, जिनको कौन बांध सकता है। भगवान गए हस्तिनापुर, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेश लेकर आए। भाई युधिष्ठिर महाराज ने संदेश दिया है कि आधा राज्य दे दीजिए, तो बोले नहीं नहीं हम लोग नहीं दे, बिना युद्ध किए सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकते हैं। अगर क्षत्रिय हैं तो युद्ध करके साम्राज्य अर्जन करना चाहिए, क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगते हैं कटोरा लेकर के, क्षत्रिय अपने पुरुषार्थ से अपने बाहुबल से साम्राज्य अर्जन करते हैं, ब्राह्मण भीख मांगते हैं। दुर्योधन ने कहा कि कैसे क्षत्रिय हैं जो भीख मांग रहे हैं कि 5 गांव दे दीजिए, हम तो कहते हैं कि पूरा साम्राज्य ही ले लीजिए युद्ध करके, 5 गांव क्या है, पूरा पृथ्वी का साम्राज्य ही युद्ध में हमें पराजित करके ले लीजिए, 5 गांव के लिए भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। दुर्योधन का कि हम बिना युद्ध के नहीं देंगे, सुई के नोक के बराबर भी नहीं देंगे। एक भक्त कहा कि प्रभु जी हमको कुछ पैसे दे दीजिए, तो कहा कि जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो क्या कोई पैसा देगा तो आप जहर खा लेंगे। एक भक्त से कहा कि प्रभु जी थोड़ा पैसे हमको दीजिए ना, कहा कि प्रभु जी मेरे पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो कहे कि ठीक है कितना पैसा लगेगा जहर खाने में, लीजिए मैं देता हूँ, और खा लेगा क्या वो निकाल, तो सुई के नोक के बराबर में नहीं, जहां वो खड़े हैं तो कई सुई के नोक के बराबर जगह है। 5 पांडव कहीं खड़े तो होते ही होंगे ना, कहीं झोपड़ी में रहते होंगे तो कितना जगह लेते होंगे, सुई के नोक के बराबर भी नहीं दे सकते। तो भगवान इस तरह से हस्तिनापुर में जब प्रस्ताव सुनाए तो दुर्योधन का कि इसको बांध लो ग्वारिये को, ये क्या दूत बनकर आया है, इसको इतना अक्ल कहाँ है, गाय चराया है, आया है हम लोगों के बीच में मेडिएशन कराने के लिए, संधि कराने के लिए। राजाओं के लिए तो कोई बहुत बड़ा राजा ही संधि करा सकता है, ये गाय चराने वाला आदमी क्या हम लोगों के बीच में समझौता कराएगा। बहुत वृंदावन में बकुला मारा है, महाराज कहते हैं बकुला मारा है, सांप मारा है, और तो और अपने मामा को ही मारा है, बेकार आदमी है। कोई बहुत प्रशस्ति बहुत सम्मानित आदमी होता तो ठीक था, कोई राजा के बीच में एक फुटपाथ पर रहने वाला व्यक्ति नहीं ना जाएगा कि आइए आप लोगों का हम बंटवारा करा देते हैं, कि नहीं जाएगा। कोई बहुत सम्माननीय व्यक्ति है, बहुत अमीर आदमी है, भाई भाई में विवाद हो, बहुत अरबपति आदमी विवाद हो, एक आदमी रोड पर जाए के बोले आइए आप लोगों का हम बंटवारा करा देते हैं, तो मानेगा वो नहीं मानेगा, तो कहा कि आप कहाँ गाय चराने वाला आदमी, तुमको क्या अक्ल है, बल्कि दुर्योधन का इसको बंदी बना लो, बांध लो, तो वहाँ विदुर जी भी थे, विदुर जी कह रहे थे कि अब तो बात मान लो, विदुर जी धृतराष्ट्र के, अब तो बात मान लो, भगवान जगत गुरु आए हैं कृष्ण स्वयं संधि कराने के लिए, अब तो बात मान लेनी चाहिए। लेकिन दुर्योधन तो खैर तो बदमाश था ही, धृतराष्ट्र कहे कि विदुर तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगती है, विदुर नीति, तीन नीति प्रसिद्ध है, विदुर नीति, चाणक्य नीति, विदुर नीति, चाणक्य नीति, विदुर नीति, चाणक्य नीति, और एक और है शुक्र नीति, शुक्राचार्य, शुक्राचार्य भी बहुत बड़े नीतिज्ञ हैं, शुक्राचार्य भी नीतिज्ञ हैं, शुक्र नीति, विदुर नीति, चाणक्य नीति। तो ऐसे तो पहले भी विदुर जी समझाते थे कि पांडवों का आधा राज दे दीजिए, नहीं तो सब विध्वंस हो जाएगा। धृतराष्ट्र को विदुर जी समझाते थे कि पांडवों से आप बैर मत रखिए, जिनके साथ जनता जनार्दन भगवान स्वयं खड़े हैं, जो जगत के पालक भगवान हैं पांडवों के साथ में हैं, उनसे बैर करेंगे तो आपका खैर नहीं रहेगा। से रावण जो विभीषण से बैर किया, मारा, अब विभीषण भगवान के साथ हो गए, विभीषण भगवान के पास चले गए। तब मंदोदरी ने कहा रावण से कि देखो तुम्हारा भाई अब राम के पक्ष में चला गया है, घर के भेदी लंका डाही। अब विभीषण जो है राम के दल में चले गए हैं, जो भी गुप्त बातें हैं वो राम को बता देगा, इसलिए राम से बैर मत करो और उनकी जगत जननी सीता को वापस दे लो। भाई विभीषण चला गया, हमारे कहते घर के फूटे कौन भल भयो, और रावण बाली दोनों घर गयो। घर का अपना आदमी अगर फूट जाए, बाली का भाई सुग्रीव फूट गया और रावण का भाई विभीषण फूट गया, तो सब भेद बता दिया। तो विदुर जी कहे कि देखिए पांडव कृष्ण से मिल गए हैं और भगवान हैं, उनसे आप पार नहीं पा सकते हैं, इसलिए उनसे संधि कर लीजिए, उन लोग का राज दे दीजिए। बहुत समझाते थे शास्त्र से उदाहरण देकर, लेकिन विदुर से कहते थे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र कहते कि विदुर तुम्हारी बात बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है, कर्ण प्रिय है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे हृदय में टिक नहीं पाती है। जैसे बादलों में बिजली चमकती है तो कुछ सेकंड के लिए प्रकाश होता है, तो तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय में अस्थाई रूप से नहीं टिकता है। जैसे कुत्ते की पूंछ को खूब मसाज करके, एक बार महाराज कहते कुत्ते की पूंछ को खूब मसाज करिए, फिजियोथेरेपी कराकर सीधा कराने का प्रयास कीजिए, और हो सके तो डंडा में बांध करके 100 वर्ष छोड़ दीजिए, और खोलिए फिर हो फिर ऐसे मुड़ जाएंगे। यद्यपि कुत्ते की आयु 100 वर्ष नहीं होती है, अतिशयोक्ति है, मतलब कितना भी प्रयास करेंगे कुत्ते की पूंछ जो है घी लगाकर मसाज के फिर भी वो मुड़ जाए। उसी तरह धृतराष्ट्र इतने आसक्त थे सत्ता में, इतने पुत्र के व्यामोह में थे कि उनकी उनको और बातें अच्छी नहीं लगती थी। कोई कहे कि नहीं नहीं अपने पुत्र को ही राजा बनाइए तो अच्छा लगता था, राज का बंटवारा नहीं चाहते थे, संपूर्ण राज्य जो है अपने पास, नहीं तो अपने पुत्र के पास रखना चाहते, मैं और मेरे, मैं रहूं नहीं तो मेरा कोई आदमी रहे, दूसरा न रहे। तो विदुर जी जब देखे कि भगवान का भी अपमान हो रहा था, दुर्योधन ने भगवान को ही अपमान किया, तो विदुर जी उसी समय घर छोड़ करके धनुष बाण रख करके यात्रा पर निकल गए, अपना राजसी ठाट बाट छोड़ करके, कौपिन कंथा खल भाग्यवंता सब छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले गए, और तीर्थ यात्रा में पूरे भारतवर्ष के तीर्थों का दर्शन किए, तीर्थ यात्रा किए हर जगह। भागवत में वर्णन कहाँ कहाँ गए थे, तीर्थ यात्रा करते 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 वृंदावन में आए, तो वृंदावन में जमुना के तप उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी से भेंट हुई तो समाचार हुआ, भाई कैसे हैं सब लोग, हस्तिनापुर के लोग कैसे हैं, द्वारिका में कैसे चल रहा है, वृंदावन के लोग कैसे हैं, सब समाचार पूछने लगे। तो उद्धव जी कहे कि सब तो ठीक है, लेकिन भगवान अपने धाम में चले गए हैं और जाते समय आपका याद किए थे। विदुर जी इतने महान भक्त थे कि भगवान जाते समय भी उनको याद किए थे और कहे थे विदुर और मैत्रेय से कि इस संदेश को, भागवत संदेश को विदुर जी से भी कह दें। भगवान जब अपने धाम में जाने लगे प्रभास क्षेत्र में, तो भक्त लोग कहे कि आपके विरह में भक्त कैसे रहेंगे, जो आपके साथ रहे, आपके सान्निध्य में रहे हैं, आप चले जाएंगे तो बहुत भक्त लोग दुखी हो जाएंगे। तो भगवान कहे कि मैं भागवत के रूप में, तो उस संदेश को अंत में विदुर मैत्रेय और उद्धव से कह करके कहे कि विदुर को भी कहना। तो उद्धव जी जब कहे कि भगवान धाम में जाते समय आपका याद किए थे और कहे कि भागवत संदेश उनको भी, तो यह सुनते ही विदुर जी मूर्छा आ गई और धूल में लौटने लगे कि भगवान मुझे याद किए हैं। तो बड़ा ये हो गए, तुम महाभाव में तुम धूल लौटने लगे ब्रज रज में। फिर और वार्ता होने लगी कि महाभारत के युद्ध में सभी धृतराष्ट्र के सभी पुत्र मार दिए गए और 5 पांडव भगवान की कृपा से सुरक्षित बचे हैं, युधिष्ठिर महाराजा बन गए हैं। धृतराष्ट्र उन्हीं पांडवों के संरक्षण में हैं जिनको मारने के लिए अथक प्रयास किए थे, वही भीम के द्वारा भोजन लेकर अभी भी जीने की इच्छा रखते हैं। जब उद्धव जी सब बताए इस तरह की बातें हैं, तो विदुर जी हस्तिनापुर में आए अपने भाई धृतराष्ट्र को उस परिस्थिति से निकालने के लिए। जब हस्तिनापुर में आए तो सब लोग बहुत खुशी हो गए, सब लोग मिलने के आए, गंधारी, धृतराष्ट्र, कुंती, द्रौपदी, सारे भाई, यहाँ तक कि उत्तरा, सुभद्रा, सभी लोग आए। कौरव पक्ष की भी जो विधवा रानियां थीं, सब लोग मिलने के लिए विदुर जी आए हैं। विदुर जी बहुत सम्माननीय व्यक्ति थे और सबके लिए बहुत प्रिय थे, तो सब लोग मिल करके उनको देख करके, बहुत दिनों के बाद आए थे तो कुछ लोग रो रहे थे देख करके, स्त्रियां जो विधवा हो गई थी रो रही थी। युधिष्ठिर महाराज, सब लोग बहुत उनका स्वागत किए, प्रणाम किए। युधिष्ठिर महाराज उनको आसन में बैठा कर उनका चरण प्रक्षालन किए, खाने के लिए विविध पकवान दिए। फिर समाचार करने लगे कि या चाचा जी अब कहाँ रहे इतना दिन तक, कैसे खाते पीते थे, कहाँ कहाँ घूमे, पूछ रहे थे कहाँ कहाँ गए हैं आप, आप कहाँ जमीन पर सो जाते होंगे, कभी उपवास कर जाते होंगे, से समाचार पूछ रहे थे। जैसे भगवान राम 14 वर्ष वनवास से आए अयोध्या में, तो वशिष्ठ जी पूछ रहे थे कि आप वन में कैसे रहे, आप राजपुत्र बहुत राज ऐश्वर्य में रहे, वन में कैसे रहे 14 वर्ष, क्या खाते थे, वशिष्ठ जी पूछ रहे थे। तब भगवान कहे कि कभी खाते थे कभी नहीं भी खाते थे, बलकल पहनते थे, जमीन पर सो जाते थे। जब सीता का हरण हुआ तो उपवास किए थे, उसके पहले जब पिता का मरण हुआ तो उपवास किए थे, जब सुने कि दशरथ महाराज शरीर छोड़ते उपवास किए थे, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो उपवास किए थे, से बता रहे थे। तो विदुर जी से कहे कि आप कैसे यात्रा में रहे, क्या खाए थे, कहाँ कहाँ गए थे, बहुत अच्छा संवाद है भागवत में। विदुर जी बताए कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा किए, ये सब पूछते पूछते कहे कि आप तो स्वयं तीर्थ हैं, आपके लिए तीर्थ यात्रा करना कोई महत्व तो नहीं रखता है, आप तो स्वयं तीर्थ हैं, तीर्थ भूतो स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्य न गदा भृता। आपके हृदय में सदा भगवान विराजमान हैं, आप तो तीर्थ स्वयं हैं, आपसे तो तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप तो तीर्थ को भी तीर्थ बनाने वाले हैं, पवित्र बनाने वाले हैं। विदुर जितने महान भक्त थे और उनकी प्रशंसा युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं, वो भी महान भक्त है, युधिष्ठिर महाराज भी महान भक्त, ऐसे महान भक्त एक महान भक्त की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप तो स्वयं तीर्थ हैं, आप तीर्थों में जाने का मतलब कि तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं और पवित्र कर देते हैं। सामान्य लोग तीर्थ में जाते हैं तो अपना पाप छोड़कर जाते हैं, है कि नहीं, या कोई प्लास्टिक है या पत्ता है खाकर फेंक देता है। हम लोग तीर्थ में जाते हैं तो गंदा करके चले जाते हैं, कड़ा कुचड़ा वहीं फेंक देते हैं, कुचड़ा है, गंदगी है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक बोतल है, थम्सम लिमका का बोतल है, पीकर वहीं फेंक देते हैं। और दूसरे लोग आते हैं उसको सफाई करते हैं, कुछ लोग टोकरी लेकर के झाड़ू लेकर तीर्थों को शुद्ध करते हैं, सफाई करते हैं, आ कुछ लोग बोलते हैं हम गंदा ही करेंगे, वे लश्कर के साथ चलते हैं, बहुत भारी भरकम यात्री लगा, जहाँ जाते हैं गंदगी फैला देते हैं। अब जहाँ जाइए वहाँ गंदगी न करके, गंदगी किए तो साफ करके जाइए, कि बहुत फैशन हो गया यात्रा निकलने का, हम यात्रा ले जा रहे हैं, यूथ ले जा रहे हैं, भाड़ ले जा रहे हैं, ले जा रहे हो तो वहाँ सफाई करके जाओ जो जगह पर हो, और छोड़ने से पहले उसको सफाई करके जाओ। ऐसी बात महाराज कह रहे थे कि जहाँ आप जाएं यात्रा में तो जाने से पहले जितना साफ है उतना साफ छोड़ करके जाइए। विदुर जी कैसे जा रहे हैं, तीर्थों को पावन करने के लिए, पावन करना मतलब साफ सफाई भी करते थे, ऐसा नहीं कि जाना है, जैसे कोई राधा कुंड पर जाता है तो सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, फूल माला चुनता है, अब कुछ लोग जाकर और गंदा करके चले जाते हैं। तो विदुर जी महान भक्त हैं, उनके स्पर्श से तीर्थ और पवित्र हो जाते हैं। तो विदुषी महाराज उनकी प्रशंसा में कहें आपके जैसे महान भक्त तो स्वयं चलते हुए तीर्थ हैं, तीर्थ तो स्थायी रहता है लेकिन आप चलायमान होते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वही तीर्थ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भवत विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो, आप विधा माने तीर्थ की भांति, भागवता भक्तगण आपके जैसे महान भक्त तो स्वयं तीर्थ हैं, और तीर्थ स्थान सामान्य जगह को भी तीर्थ बना देते हैं। तीर्थी कुर्वंती विदुर जी के लिए थे तीर्थी कुर्वंती तीर्थन, तीर्थ को भी पवित्र बना देते हैं, तीर्थ है उसको और पवित्र बना देते हैं। अब प्रभुपाद जी क्या किए, जो तीर्थ नहीं था उसको भी तीर्थ बना दिए प्रभुपाद जी, अद्भुत काम किए, जो भोग भूमि था वहां गए तो वहां भी न्यू वृंदावन बना दिए, है कि नहीं। विदुर जी तो तीर्थ स्थान को पवित्र कर दिए, लेकिन प्रभुपाद जी तो भोग भूमि पाप भूमि जहाँ मलेच्छ लोग निवास करते हैं, जहाँ सब प्रकार के पाप होते हैं, वैसे जगह को भी तीर्थ बना दिए। जैसे वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन, न्यू जगन्नाथपुरी भी है, न्यू द्वारकापुरी। तो प्रभुपाद जी तो जो तीर्थ नहीं था भोग भूमि था उसको भी तीर्थ में बदल दिए, ये भक्त का प्रभाव है। प्रभुपाद जी पूरे दुनिया में हर जगह मंदिर वृंदावन का वातावरण पूरे दुनिया में हर जगह बना दी। लोग जाते भी हैं, दूसरे संस्था के लोग भी जाते हैं तो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने विदेशों में ऐसा हर जगह सुविधा दे दिया कि हर जगह प्रसाद खाने को मिलता है। एक बार रामस्वरूप शर्मा जी जो लीला करते थे वृंदावन के, बहुत प्रसिद्ध थे कृष्ण लीला राम लीला के लिए, तब मुंबई में मंदिर के बगल में ही वो लीला कर रहे थे कृष्ण लीला राम लीला, तो लीला के क्रम में बोल रहे थे कि हम विदेशों में जाते हैं तो प्रभुपाद जी के कृपा से हर जगह प्रसाद की सुविधा है, हर जगह मंदिर दर्शन है। बता रहे थे प्रभुपाद जी पूरे दुनिया में ये सुविधा दे दिए हैं, कहीं भी जाइए मंदिर जरूर मिलेगा, वहाँ जरूर भी प्रसाद की सुविधा खाने प्रसाद खाने की सुविधा मिल जाती है। तो प्रभुपाद जी कितना बड़ा कार्य किए, विदुर जी तो केवल तीर्थ में ही, तुलनात्मक दृष्टि से विदुर जी तो केवल भारतवर्ष में ही तीर्थों में भ्रमण किए, और प्रभुपाद जी पूरे दुनिया में 14 बार पृथ्वी का परिभ्रमण किए और हर जगह नरक था उसको भी तीर्थ बना दिए। जो विषयी थे, विषयी दुर्जन सदा कामे रहता, वैसे लोगों को भी वैष्णव बना दिए। जो रात दिन विषय में रहते थे, शराब पीते थे, मांस खाते थे, उनको भी चाय कॉफी भी का भी आदत छुड़ा दिए। प्रभुपाद जी कितने महान हैं, प्रभुपाद जी की जितनी भी प्रशंसा अगर हम करें वो कम ही है। जैसे विदुर जी के विषय में दृष्टि महाराज के आप स्वयं तीर्थ हैं, तीर्थ यात्रा करना आपके लिए महत्व नहीं रख, बल्कि तीर्थों के लिए लाभप्रद है कि तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। सामान्य लोग प्रयागराज में जाते हैं, मानसी गंगा में जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं तो अपना पाप छोड़ने के लिए जाते हैं, अपने को शुद्ध करने के लिए जाते हैं, लेकिन आपके जैसे महान भक्त जाते हैं तो उन तीर्थों को भी, तीर्थ भी लाभान्वित हो जाते हैं और पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। आपके समान संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं, अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य संगी होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थानों को भी पावन बना सकते हैं। सुंदर बात है, धन्यवाद। कोई प्रश्न है, 5 मिनट समय है, कोई किसी को प्रश्न है, जिज्ञासा है, ठीक है, धन्यवाद। अब सब लोग प्रसाद के लिए बढ़ने लगे हैं। श्रील प्रभुपाद की पूछी तो देर क्यों करा, पहले ना पूछना चाहिए, हाथ उठाना चाहिए। अब सब लोग तो उठने लगे, प्रश्न का तभी हाथ ऐसे करना चाहिए। पूछो,
ऋषि मैत्र ने कैसे प्राप्त किए थे,
क्या थे
ऋषि मैत्र जो है, मैत्र ऋषि व्यासदेव जी का कृपा मिले थे तो कैसे मिले थे, ये
ऋषि मैत्र जी तो स्वयं भगवान से ही भागवत प्राप्त किए थे। स्वयं भगवान ही उद्धव जी को, मैत्रेय जी को अपने धाम में जा रहे थे ना, तो स्वयं भागवत का ज्ञान दिए थे, और फिर मैत्रेय जी से विदुर जी प्राप्त किए। उद्धव जी को भी बोले थे, लेकिन उद्धव जी संकोच बस उम्र में छोटे थे तो कहे कि आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए, भगवान ने जो संदेश दिया है आप मैत्रेय जी से प्राप्त कीजिए, तो वही मैत्रेय उद्धव संवाद भागवत में आया, कई संवाद है। गोकर्ण धुंधकारी का संवाद, शिव पार्वती संवाद, जाग्ञवल्क भारद्वाज संवाद, शिव जी पार्वती जी से भी कहते हैं कई कटा, और गरुड़ जी से काक भुसुंडी कहते हैं, इसके कई सोपान हैं। तो भागवत के कई कई स्तर से लोग हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को किए हैं, भागवत में कहते हैं ना कि मैत्रेय मुनि उद्धव विदुर जी से कह रहे हैं, तो शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं, से कई जगह सुनने में आता है। गोकर्ण जी धुंधकारी को सुनाए, तो स्वयं भगवान ही मैत्रेय मुनि को भागवत संदेश सुनाए थे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की।